प्रिय श्रोताओ नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से होशे नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है छुटकारा देने वाला। श्रोताओ हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से होशे नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर होशे को एक व्यभिचारी स्त्री से शादी करने के लिए कहता है और इसके माध्यम से वह इसराइल को एक शिक्षा देना चाहता है। मेरे प्रियो, हम उसी के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम फिर से देखेंगे कि होशे इसराइल के विषय में क्या लिखता है। तो इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे जाएं, आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। आइए आप सब मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह जीवन दान दिया है ताकि हम फिर से आपके पवित्र चरणों के पास आकर आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का, सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। पिता परमेश्वर, इस घड़ी हमारी प्रार्थना है अपने उन सभी श्रोता भाई बहनों के लिए जो दूर दराज में बैठकर आपके वचनों को सुनने की इच्छा रखते हैं, जानना और सीखना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके कानों में होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन की जितने भी समस्याएं हैं आप में होके दूर होने पाए। होशे नबी की पुस्तक के द्वारा से आप हमें से प्रत्येक से बोले और बातचीत करें। हाँ प्रभु, आप हमें सिखाएं ताकि हम आपकी उन महान सच्चाइयों को जान सकें और अपने जीवन में ग्रहण करके उसे अपने परिवार में, अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं और आपको महिमा देने पाएं। इस घड़ी हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, निराश और परेशान हैं। पिताजी आप उन पर भी दया दृष्टि करें, उन्हें अपनी शांति और उन्हें धैर्य दें ताकि प्रत्येक जीवन आप में धन्य होने पाए, आपको महिमा देने पाए। आज के वचन पर हम आपकी आशीष मांगते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आज हम होशे के पुस्तक से आगे अध्ययन करने जा रहे हैं और इसमें हम विषय के रूप में देखना चाहते हैं कि होशे इसराइल के लिए क्या कहता है। तो आइए आप मेरे साथ होशे नबी की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 4 पद को निकाल लीजिए। होशे नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि इसराइली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाठ और बिना एपोद या गृह देवताओं के बैठे रहेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, लिखा है इसराइली बहुत दिन बिना राजा के बैठे रहेंगे। वह निश्चित समय नहीं बताता है। यह एक विचित्र बात है क्योंकि इसराइल को 3 बार कहा गया है कि वे देश से बाहर किए जाएंगे और 3ों बार स्वदेश लौटेंगे। पहली बार परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि वह उसे यह देश देगा, परंतु उसके वंशजों को 430 वर्ष के लिए मिस्र में रखेगा, तदुपरांत लौटा ले आएगा। और ऐसा ही हुआ भी। दूसरी बार उसने यर्मिया के द्वारा कहा कि उनके पाप के कारण वह उन्हें 70 वर्ष बाबुल की बंधुआई में रखेगा, और ऐसा ही हुआ भी। अब तीसरी बार वह होशे के द्वारा इसराइल से कहता है कि वे बिना राजा रहेंगे, वे स्वदेश कभी नहीं लौटे। हम देखते हैं लिखा है बहुत दिन, अर्थात कितने दिन। मैंने किसी को कहते हुए सुना है कि यह पीढ़ी प्रभु के आगमन को देखेगी। अशिक्षित विश्वासियों को यह सुनकर अच्छा लगेगा, परंतु परमेश्वर के वचन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आज अनेक झूठे भविष्यद्वक्ता हैं जो झूठी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने हमें निश्चित समय नहीं दिया क्योंकि 70 में उनका तीतर बितर होना और उनके स्वदेश लौटने के मध्य का समय प्रभु के द्वारा अपने नाम के निमित्त अन्य जातियों को बुलाने और कलीसिया बनाने का समय है। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि हम अंतिम समय में वास करते हैं, परंतु मैं यह नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु कितनी शीघ्र आएगा, क्योंकि 2012 वर्ष पूर्व ही से प्रभु यीशु ने कहा मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। इसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 11 पद, 22 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं। अतः मैं यह नहीं कह सकता कि वह कल आएगा या अगले सप्ताह आएगा या अगले वर्ष आएगा या इसी शताब्दी में आएगा, परंतु निश्चय ही हम मंच की तैयारी देख रहे हैं और कलीसिया के उठाए जाते ही काम शुरू हो जाएगा। मेरे प्रियो, होशे की पुस्तक में तिथि न देने का कारण है कि धर्मशास्त्र में कलीसिया को न तो नाम दिया गया है और न ही तिथि दी गई है। सच्ची कलीसिया के सदस्य स्वर्गिक हैं जिनका नाम नहीं है। आप सोचते हैं कि यह मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, क्रिश्चियन या अन्य कोई नाम है, परंतु सच तो यह है कि धर्मशास्त्र में उसका नाम नहीं दिया गया है। कलीसिया का अर्थ है बुलाया गया समूह। वह एक समूह को बुला रहा है कि प्रभु यीशु की दुल्हन हो। मैं इसका नाम प्रस्तावित कर सकता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 45 पद में प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया था। एक व्यापारी प्रभु यीशु ने मोती अर्थात कलीसिया को पाने के लिए सब कुछ बेच दिया। हम पढ़ रहे हैं कि एक व्यापारी अर्थात प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि कलीसिया को पाने के लिए उसने सब कुछ बेच दिया है। अतः कलीसिया को यदि कोई नाम दिया जाए तो वह है मार्गरेट कलीसिया, क्योंकि मोती का शब्द है मार्गराइट। मैंने एक बार किसी से कहा कि मैं मार्गराइट चर्च जाता हूं, तो वह सोचने लगा कि मैं मनोविनोद करता हूं, यानी कि उससे मजाक कर रहा हूं, परंतु मैं गंभीर था। अतः कलीसिया का न तो नाम है और न ही तिथि। यदि आप पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के आने से पूर्व शमौन पत्रस से पूछते, क्या तू जानता है कि यहां क्या होने वाला है, वह कहता, नहीं। क्यों? क्या होने वाला है? क्यों? क्योंकि कलीसिया के उदय की घोषणा तो की गई थी, परंतु उसका समय नहीं बताया गया था। मेरे मित्रों, कलीसिया के उठाए जाने के समय भी नहीं बताया गया है। यही कारण है कि होशे कहता है, इसराइली बहुत दिन तक बिना राजा के बैठे रहेंगे। यहां पर निश्चित समय नहीं दिया गया है। आज उस देश में अनेक नागरिक हैं जो यह दावा करते हैं कि वे अपने गोत्र का नाम बता सकते हैं, परंतु मुझे गंभीर शंका है, आज एक भी इसराइली नहीं है जो यह कह सके, मैं दाऊद का वंशज हूं और मुझे सिंहासन पर बैठने का अधिकार है। ऐसा दावा करने वाला इस समय स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। परंतु इसराइल ने अपने राजा का तिरस्कार किया है, इसलिए हम पढ़ते हैं कि बिना हाकिम उनके पास सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं है। यदि प्रभु यीशु उनका मसीहा नहीं है तो फिर उनके पास आशा नहीं कि कोई और उनका मसीहा हो। तब हम देखते हैं बिना यज्ञ, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। जी हां, यही कारण है कि कुछ विचारकों का कहना है कि हमें अंत तक रहना होगा अन्य जातियों का समय पूरा होने तक, क्योंकि इसराइल में अभी यरूशलेम बसा हुआ है। अब प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में वहां यरूशलेम है? सच तो यह है कि प्राचीन यरूशलेम के सब पवित्र स्थल या तो अन्य जातियों के पास हैं, या रूसी कैथलिक या यूनानी कैथलिक या अमेरिकन कैथलिक या रोमन कैथलिक कलीसिया के अधिकार में है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस समय यरूशलेम उनके हाथ में नहीं है। इन सब ने उन पवित्र स्थलों में आराधनालय बनाए हुए हैं। इसराइल के हाथ में कुछ नहीं है, वरन वे उनमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया, जब वह यरूशलेम गया हुआ था तो वहां पर उसने अपने यहूदी गाइड से कहा कि आपके पास तो यरूशलेम है, तो आप लोग यहां पर अन्य जातियों के द्वारा जो आपके मंदिर को कब्जा किया हुआ है हटाकर अपना मंदिर क्यों नहीं बनाते? उसने कहा, आप चाहते हैं कि हम तीसरा विश्व युद्ध छेड़ दें? यह सच है मेरे प्रियो, इसराइल के हाथ में वह मंदिर स्थल नहीं है और न ही वहां किसी प्रकार की बलि चढ़ाई जाती है। एकमात्र पवित्र स्थल जो उनके पास है वह है विलाप की दीवार। वे आज भी वहां जाते हैं। उनके पास प्रभु ईश्वर के बलिदान को छोड़ दूसरा कोई बलिदान नहीं है। वह नगर के बाहर मरा था 2012 वर्ष पूर्व और फिर जी उठा तथा आज परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, बैठा है। हम आगे देख रहे हैं बिना एपोद। परमेश्वर ने तो इसराइल को कोई मूर्ति नहीं दी थी। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 4 पद में परमेश्वर ने कहा था कि वे किसी प्रकार की मूरत ना बनाएं, परंतु उसने उन्हें एपोद दिया था जो महायाजक का पवित्र वस्त्र था। तेरा कीम उनके लिए सौभाग्य के ताबीज के समान था जिसकी उन्होंने पूजा करना आरंभ कर दी थी। परमेश्वर कहता है कि वे मूर्ति पूजा से दूर किए जाएंगे, उनके पास किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं रहेगी। यह एक बात आज इसराइल में है, वे मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। चाहे वे परमेश्वर की ओर न फिरें तो भी उनके बीच में अब ऐसा ही है। मेरे प्रियो, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे होशे नबी के पुस्तक 3:5। 3:5 में लिखा है, उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। उसके बाद वे थरथराते हुए आएंगे, इसका अर्थ यह नहीं कि सन 2013 में वे परमेश्वर के पास आएंगे। मैं नहीं जानता कब, परंतु वे निश्चय ही एक दिन स्वदेश लौटेंगे जो परमेश्वर के निर्धारित समय के अनुसार होगा। मेरे प्रियो, जब वे लौटेंगे तब अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। मैं आपको उनके विषय एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। उनका आज स्वदेश लौटना अद्भुत घटनाओं का कारण अवश्य है, परंतु इस भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं है। भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें परमेश्वर को ढूंढना है, परंतु आज वहां परमेश्वर की खोज नहीं की जा रही है। दो भविष्यवाणी के विशेषज्ञों के अनुसार इस भविष्यवाणी की पूर्ति से पूर्व इसराइल को एक बार फिर अपने देश से बाहर जाना होगा और जब वे स्वदेश लौटेंगे तब ईश्वर भक्ति अर्पित करेंगे। उन्होंने जब अपना 20वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था तब उनका नारा था, विज्ञान इस देश में शांति लाएगा। परंतु बाइबल के अनुसार मसीहा उस देश में शांति स्थापित करेगा। मेरे मित्रों, वे परमेश्वर के स्थान पर विज्ञान पर आश्रित हैं और समृद्धि के लिए आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व उनकी एक अर्थव्यवस्था की सभा में रॉकफेलर और कोई उपस्थित थे और प्रत्येक ने उस देश में 5-5 करोड़ रुपए लगाए। आज वहां असामान्य विकास हो रहा है। वहां के एक माननीय सेवक से पूछा गया कि उस देश में आज कितने सच्चे विश्वासी हैं, तो उसका उत्तर था, आज इसराइल में 300 से कम यहूदी विश्वासी हैं। सच तो है कि इसराइल में यहूदी विश्वासियों की संख्या से अधिक अरब विश्वासी हैं। इसराइल में सुसमाचार प्रचार वास्तव में एक अत्यधिक कठिन कार्य है। इसराइल प्रभु यीशु की ओर नहीं फिरा है। जी हां, धर्मशास्त्र का समग्र अध्ययन स्पष्ट प्रकट करता है कि होशे की यह भविष्यवाणी आज पूरी नहीं हुई है। कुछ विचारक हैं जो यदा कदा एक या दो बाइबल पद पकड़कर कहते हैं कि यह भविष्यवाणी पूरी हो गई है। मेरे मित्रों, भविष्यवाणी की पूर्ति के पक्ष में एक वाद यह भी है कि वहां संतरे बहुतायत से उगने लगे हैं, जिनका उल्लेख यशाया नबी की पुस्तक 17:10 में किया गया है। परंतु श्रेष्ठ गीत में सेव के पेड़ों का उल्लेख किया गया है, परंतु वे वास्तव में संतरे के पेड़ हैं। कुछ लोगों के विचार में वहां के संतरे स्पेन और अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। वह देश निश्चय ही संतरे उगा रहा है, परंतु वे विदेशी कलम नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन के निकट रहना है और भविष्यवाणी के उन्मादी नहीं बनना है। इसलिए लिखा है, यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। यहां जिस समय का उल्लेख किया गया है वह इसराइल का समय है, जो महाक्लेश और प्रभुराज का समय नहीं है। मेरे मित्रों, इसराइल के लिए भविष्यवाणी करते समय होशे कहता है कि वे बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाठ और बिना एपोद और बिना गृह देवताओं के बैठे रहेंगे। उसकी एक एक बात आज तक तो सत्य सिद्ध हो रही है। उनके पास न तो दाऊद के वंश से कोई शासक है, न उनके पास बलि चढ़ाने के लिए मंदिर है, न महायाजक है और न ही मूर्ति पूजा में वे व्यस्त हैं। मेरे प्रियो, वे तीन बार परदेश गए और लौटे। दो बार उनका समय निश्चित किया गया था, परंतु तीसरी बार उनके स्वदेश लौटने का समय निश्चित नहीं किया गया है। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि अध्याय तीन समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय चार से जारी रखेंगे और हम इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे। अध्याय चार का विषय है, परमेश्वर के समक्ष इसराइल दोषी है। होशे की पुस्तक में अब से आगे भविष्यद्वक्ता होशे के व्यक्तिगत जीवन का उल्लेख नहीं किया गया है। पिछले अध्याय के अंतिम दो पदों के साथ होशे का व्यक्तिगत जीवन पाशरों में खो जाता है और ध्यान परमेश्वर तथा विश्वासघाती इसराइल पर केंद्रित होता है। इसराइल का स्वभाव एक वेश्या का सा दिखाई पड़ता है। जी हां, अध्याय 4 से 14 में हम भविष्यवाणियों को देखते हैं। इसराइल परमेश्वर के समक्ष दोषी है। अपनी दुखद पारिवारिक दशा के बाद अब होशे इसराइल को संदेश सुनाता है और वह परमेश्वर के दिल के दुख को भली भांति समझता है। अब तो परमेश्वर की बातों को वह उन तक पहुंचा ही रहा है। हम देखते हैं कि अब तक तो परमेश्वर सामान्य रूप से ही कह रहा है कि उन्होंने पाप किया है, उन्होंने वेश्या का सा उसके साथ व्यवहार किया है, उन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है। अब परमेश्वर उन्हें न्यायालय में खड़ा करके उन पर दोष लगाता है और अपना आरोप सिद्ध करता है। अध्याय चार का संदेश है कि इसराइल नियम तोड़ने का दोषी है, दुराचार का दोषी है, परमेश्वर के वचन के तिरस्कार का दोषी है, मूर्ति पूजा का दोषी है। इस अध्याय की तुलना यशाया अध्याय एक से की जा सकती है, क्योंकि वहां यशाया दक्षिणी राज्य यहूदा पर दोषारोपण कर रहा है। यह सच है कि इसराइल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी। परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी थी, मूसा की व्यवस्था। यहां हमें एक बात समझना है, किसी भी राष्ट्र के नियम और कानून परमेश्वर का प्रतिमान है। यदि वह राष्ट्र आशीष पाना चाहता है, जी हां, यह सब राष्ट्रों के लिए है। अब कोई देश यह कहे कि उनके देश में मूर्ति पूजा नहीं होती है, तो मैं कहता हूं कि मेरे मित्रों, लालच भी एक प्रकार की मूर्ति पूजा है, पैसे का लोभ मूर्ति पूजा है। हम इसराइल पर उंगली उठाकर कह सकते हैं, उनका परमेश्वर त्याग लज्जा की बात है, परंतु हमें अपने आप को परख कर देखना है कि क्या हमारे साथ भी ऐसा ही तो नहीं है। मेरे प्रियो, हम अगले अध्ययन में देखेंगे। उसके पहले पद में परमेश्वर कहता है कि उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको भी इस वचन के प्रकाशन में देखने की आवश्यकता है कि क्या हम भी इसराइलियों की तरह परमेश्वर का त्याग कर रहे हैं। क्या आज हम परमेश्वर से बढ़कर उन पैसों को अहमियत दे रहे हैं, अर्थात हम भी मूर्ति पूजा की ओर बढ़ रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम फिर कर उसकी ओर आ जाएं, उससे प्रेम करें, उसकी बातों को माने, उसके वचन के अनुसार चलें। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन इस समय किस प्रकार का जीवन है, परंतु आज मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपका जीवन परमेश्वर से दूर है तो आज आप परमेश्वर की ओर लौट आएं, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, परंतु आज आप निर्णय लेकर परमेश्वर के उस प्रेम में, उसकी संगति में बन सकते हैं। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। हम अगले अध्ययन में इससे आगे की बातों को सीखेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, प्रभु की संगति में बने रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
Thank you.